सो हमारे शास्त्रों में लिखा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है वो है लोभ, ग्रीच, लालच, लौल्यम। सो जो लालच है वैसे तो बुरा माना जाता है, नहीं कि लालची नहीं होना चाहिए। लालची का मतलब हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, हमेशा अपने फायदे की बात करना, है ना। और ये जो लोभ है, ये अगर हम भौतिक संसार में लगाएं इसको तो बंधन का कारण है, लेकिन अगर हम इसको भगवत सेवा में लगाएं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर लोभ हो हमारे मन में तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे इसके कारण, है ना। जैसे रूपा बताते हैं कि जैसे बंदर को कैसे पकड़ते हैं, है ना, तो बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक सुराही लेते हैं, उसका छोटा छोटा मुंह होता है उसका, है ना, और उसमें चने डाल देते हैं उसके अंदर। तो बंदर देखता है सुराही में चने हैं, तो हाथ डालता है और चने उठा लेता है। जब चने उठाता है तो मुट्ठी बन जाती है उसकी, अब वो जो भार निकालता है तो हाथ फंस जाता है उसका, भार नहीं निकाल पाता, है ना, क्योंकि मुट्ठी बंद है उसकी। सो बहुत कोशिश करता है खींचने की, भार नहीं निकाल पाता। दूर से मदारी आ जाता है उसको पकड़ने के लिए, वो देखता है बंदर कि वो मुझे पकड़ने आ रहा है और तेजी से हाथ खींचता है। अगर छूटना है तो क्या करना है उसको, मुट्ठी उसको खोलनी है ना, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलता वो, और प्रयास करता रहता है निकलने के लिए, और क्या होता है कि उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता, मदारी आता है उसके गले में फंदा डाल देता है ना। ये है भौतिक संसार में लालच। सो इस भौतिक संसार में हम भी छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं, और जो सबसे मुख्य लालच है इस भौतिक संसार में फंसे रहने का, वो है इंद्रिय तृप्ति। ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छम, जो ग्रह मेदी है, जो हमेशा अपने घर में सुरक्षित महसूस करना चाहता है, वो थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिलती है उसको, घर वालों का सम्मान मिल जाता है, पत्नी से थोड़ी उसकी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, उसी में सोचता है कि जीवन सफल हो गया, है ना, और पूरा जीवन इसी जो थोड़ा सा लालच है इसके चक्कर में फंसा रहता है, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है उसका। लेकिन अगर यही जो लोभ है, जो लालच है, जो लौल्यम है, अगर हम कृष्ण भक्ति में लगाएंगे तो हमारा भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत तेजी से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और हमारे आचार्य कहते हैं कि लौल्यम अपि मूल्यम, जो लौल्यम है वही एकमात्र कीमत है, सिर्फ आपके मन में लोभ होना चाहिए भगवान का संग करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। और अगर ये लोभ आपके मन में एक बार आ गया, फिर आपको भक्ति में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार है ना। सो गदाधर पंडित ने एक व्रत ले लिया था, गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरी में शिफ्ट हो गए थे, और वहां पे उन्होंने एक व्रत ले लिया, उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं पूरा जीवन जो है जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। इसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास, कि मैं इस क्षेत्र के अंदर रहूंगा, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे पूरी छोड़कर वृंदावन, और वो वहां से एक बारी दक्षिण भारत की यात्रा पर भी गए, तो साथ में चल रहे थे गदाधर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है सर, चल रहे हैं सारे, चलो जगन्नाथ, ये गदाधर पंडित भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पुरी की सीमा आ गई। अब वो सीमा भगवान क्रॉस करने लगे चैतन्य महाप्रभु, साथ में गदाधर पंडित भी क्रॉस करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने रोक दिया, बोल रहे क्या कर रहे हो, ये रेखा तुमने पार की तो तुम्हारा जो व्रत है वो टूट जाएगा, जो तुमने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है वो तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। तो अच्छी बात नहीं है व्रत भंग करना, है ना। सुगदाधर पंडित ने बोला भाड़ में गया व्रत, मैं ठोकर मारता हूं इस व्रत पे, मुझे आपका संग ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्रत मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, अगर ये व्रत तोड़ने के कारण मुझे नरक में भी जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका संग छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पार्षद हैं, जो मेरे संगी हैं, वो अगर कुछ व्रत उन्होंने लिया है तो उसको तोड़े, तो आप प्लीज अपने व्रत को मत तोड़िए, यहीं पे आप ठहरिए, और मैं बस गया हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में लौटाऊंगा कुछ दिनों में, तो आप इतना चिंता मत कीजिए। तो ये लौल्या में कि गदाधर पंडित जो है सम्मान आदर नरक का डर किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से भगवान के साथ रह सकूं, और इसके लिए भगवान से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आपके साथ रहना है ना। जैसे रामायण में आप देखते हैं जब भगवान राम को संन्यास मिल गया था, है ना, पता है ना आप सबको, किस किस को पता है भगवान राम को संन्यास मिला था, वनवास मिला था, कितने वर्ष का मिला था, तो वो जब वनवास मिला, तो जब वो ये वनवास का समाचार सुनकर आए चैतन्य भगवान राम, है ना, जब वो समाचार सुन के आए तो वो सीधा आए अपने महल में, तो महल में आए बताने के लिए सीता माता को कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो मैं अभी तुरंत मुझे जाना पड़ेगा वनवास के लिए, ठीक है। तो सीता माता बहुत खुशी से उनकी वेट कर रही थी, क्योंकि उस दिन उनका राज्याभिषेक होना था, है ना। तो सीता माता ने उनको देखा तो उन्होंने कहा आप इतने उदास क्यों कर रहे हो, क्या मतलब बात होगी आपकी, जो इस समय तो आपके शरीर पर चंदन का लेप हो जाना चाहिए था, और ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, सारे ब्राह्मण कहाँ हैं, मंत्री लोग सारे कहाँ हैं, आप अकेले क्यों आए हो, लक्ष्मण जी बाहर खड़े हुए थे, है ना। सो भगवान राम ने बोला बैठ जाओ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हो गया, उन्होंने बोला ऐसे जो है मेरे पिता ने वचन दिया था, तो उस वचन के चलते उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूं, तो मैं अभी बस निकल रहा हूं, आपको बताने आया था। तो सीता माता बहुत एकदम से विचलित हो गई, बहुत घबरा गई। तो सीता मैया ने उनको बोला भगवान को कि मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान राम ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जो जंगल है, जंगल में चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, है ना। जमीन की ओर देखो तो कंटीली झाड़ियां हैं, जो उसकी सतह है, जो जंगल की जो सतह होती है वो भी ऊबड़ खाबड़ होती है, हाँ, कहीं से बिच्छू निकल आएगा, सांप निकल आएगा, और शेर चीते जंगली हाथी, आप घूमते रहते हैं वहां पर। तो भगवान राम ने कहा मुझे जंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि मैंने कई बार वहां जाके मैं शिकार के लिए जाता था जंगल में, तो मुझे पूरा आइडिया है जंगल में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार खाने को नहीं मिलता, कई बार साफ पानी नहीं मिलता पीने को, तो उस समय कैसा गुजारा करना पड़ता है, उस समय अपने मन को समझा के गुजारा करना पड़ता है। भूखे रहना पड़ेगा, मन विद्रोह करेगा, खाना चाहिए, शरीर खाना मांगेगा। तो उस समय सिर्फ एक ही उपाय होता है कि मन को समझाओ कि ठीक है कल तलाशेंगे खाना, आज अब रात हो गई, इस समय खाना बाहर ढूंढने नहीं जा सकते, अभी आराम से बैठो, अगले दिन कोशिश करेंगे खाना ढूंढने की। और जो वहां पे तालाब वगैरह हैं, झीलें हैं, वो बिल्कुल सुनसान होती हैं, आप नहाने जाओ एकदम से सांप निकल आते हैं, मगरमच्छ निकल आते हैं। तो आप तो बहुत कोमल हो, आपका वहां जाना उचित नहीं है, आप आराम से यहां पर रहो और आप जो है सेवा करो, मेरे पिता की सेवा करो, जो उनकी चारों रानियां उनकी सेवा करो, और भरत जो है वो यहाँ का राजा बन जाएंगे, सो राजा की सेवा करना आपका कर्तव्य है, बस ध्यान रखना कि राजा के सामने आप मेरा कुछ भी मेरा यशोगान मत करना, क्योंकि हो सकता है उसके मन में मेरे लिए कुछ भाव ऐसा हो, वो सोचे राजा मैं आऊं तारीफ उसकी हो रही है तो बुरा ना मान जाए, तो इसलिए मेरी तारीफ ही मत करना वहां पर। कितने एक एक चीज को बहुत बारीकी से सोचते थे भगवान, नहीं इसीलिए तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, नहीं हर चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचते थे। बल्कि जब वनवास में चले गए तो भी सब लोग आए उनको मनाने के लिए, भरत महाराज, वशिष्ठ इत्यादि सारे मतलब मंत्री सुमंत्रा वगैरह सब लोग आ गए, माताएं आ गई, सबने बोल दिया चलो वापिस। बल्कि वहां पर एक ऋषि भी थे, उसका नाम था जाबाली, तो वह जाबाली ऋषि ने नास्तिक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया भगवान के सामने, उनको सिर्फ यह समझाने के लिए कि आप प्लीज अयोध्या चले जाओ और राजपाट संभालो। उन्होंने बोला कि महाराज दशरथ से आपका क्या संबंध है, आप अलग व्यक्ति हो, वो अलग व्यक्ति हैं, ठीक है प्रारब्ध से इकट्ठे हो गए, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत उनके वचन को बहुत सीरियसली मत लो। तो भगवान आपको बहुत गुस्सा आ गया, बोला क्या बात कर रहे हो, वचन की कोई कीमत नहीं है क्या, अगर अपने माता पिता की बात ही नहीं अगर मानी तो मतलब कहाँ पे शरण मिलेगी, कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते। सो भगवान राम ने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप मुझे, उन्होंने बोला नहीं देखो मेरे माँ बाप ने, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि कुछ भी हो जाए अपने पति की के चरणों की शरण में छोड़ना, कुछ भी हो जाए। वो सीता माता ने बोला कि मैं जंगल में आपके साथ ज्यादा खुश रह पाऊंगी बजाय इस महल में नौकरों से घिरे रहकर, बल्कि मैं जंगल में आपके आगे चलूंगी। तो भगवान ने बोला मेरे आगे क्यों चलोगे, नहीं जनरली पीछे चलना चाहिए, नहीं। तो सीता माता ने बोला कि मैं आपके आगे चलना चाहती हूँ, क्यों आगे चलना चाहती हूँ, आगे इसलिए चलना चाहती है ताकि अपने पैरों से जो कंटीली झाड़ियां उसको दबा दें। अब भगवान राम नंगे पैर है तो सीता मैया भी नंगे पैर है, नहीं। तो सीता माता कह रही है कि मैं आगे इसलिए चलना चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों से जो झाड़ियां कंडीलियां उसको दबा दूंगी, ताकि जब आप उस पर अपने चरण रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। भगवान राम ने कहा कुछ बात कुछ भी बोल लो मैं नहीं लेके जा सकता, तुम्हारी सुरक्षा के तुम्हें प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है, और मेरा यह मानना है कि तुम महल में रहकर ज्यादा सुरक्षित रहोगी। और सीता मैया ने सोचा कि ये मतलब प्यार से मान ही नहीं रहे, तो गुस्से में आ गई और रामायण में लिखा उनकी आंखें एकदम लाल हो गई सुख सीता मैया की, और एकदम खड़ी हो गई भगवान राम के सामने। तो उन्होंने बोला सीता मैया ने कि क्या मेरे पिता जनक ने मेरा विवाह किसी स्त्री से किया है क्या, जो मेरी रक्षा नहीं कर सकेगा? क्या तुम कायर हो कि मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे? अगर मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो अभी जहर खाकर शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन आपका साथ भी छोड़ दूंगी। तो भगवान राम ने कहा चलो ठीक है, अपने सारे गहने इत्यादि आभूषण सब ब्राह्मणों में बांट दो और चलो चलते हैं। यही हाल लक्ष्मण जी का हुआ, जब वो सीता माता और भगवान राम बाहर निकले महल से, तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे भी लेके चलो। तो भगवान राम ने कहा नहीं, तुम यहीं पे रुको और रक्षा करना सबकी, जो तीनों माताएं हैं उनकी रक्षा करना, ऐसा नहीं हो कि कई जो तीनों माताएं हैं बाकियों को उनको कुछ कष्ट पहुंचाए, है ना, तो तुम यहीं पे रुको। तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर भरत की ऐसी जुर्रत हो गई कुछ नुकसान पहुंचाने की, वापिस आके सजा दूंगा लेकिन यहां भी नहीं रुक सकता, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप दोनों के आगे चलूं तलवार लेके और जो कंटीली झाड़ियां होंगी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हटाऊं, और जब आप विश्राम करेंगे तो उसमें मैं जाकर आपकी रक्षा कर दूं, है ना। और आप सबको पता है लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, है ना, उनको जागते रहे और जो अपने भगवान राम और सीता माता की रक्षा करते थे, है ना। तो ये लॉलेम है, ये अगर हमें ये प्राप्त हो जाए किसी भी तरीके से, अगर गर्दन काट के देनी पड़े गर्दन काट के दे दी, सर्वस्व अपना नछावर कर दिया, उसके बदले में अगर हमें मिल जाए लॉलेम भगवान के प्रति हमारा अनुराग अगर जाग जाए, कुछ भी देना पड़े, हमारे जो आचार्य बोल रहे तुरंत दे देना, सोचना मत, क्योंकि करोड़ों जन्मों में कभी कभार ऐसा अवसर आता है कि आपको भगवान का जो अनुराग है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, बहुत मुश्किल है, करोड़ों जन्म लग जाते हैं बीत जाते हैं बेकार में, भगवान का प्रेम नहीं मिलता, भगवान की सेवा करने में रुचि जागृत नहीं होती, हर क्षण व्यक्ति अपने शरीर और अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। ऐसा कोई नहीं सोचता है यार कुछ भी हो आंधी हो तूफान हो मुझे सत्संग में जाना है तो जाना है, कितने लोग ऐसा सोचते हैं। अगर ये सोच हमारे मन में आ जाए, अगर हम ये हमारे दिमाग में किसी तरीके से ये बात घुस जाए कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति कर ली मतलब सारे काम पूरे हो गए, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, हमें प्रभुपाद की कृपा से कुछ ऐसा अवसर मिल गया कि हम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में सुन सकते हैं। नहीं तो आजकल भागवतम सप्ताह का मतलब है एक तुलसी विवाह कर दिया, एक रुक्मी विवाह कर दिया, शिव विवाह कर दिया और पैसे ऐंठ लिए और चलते बने, ये भागवतम सप्ताह है। भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में, भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा के बारे में कोई बताने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताएंगे तो यह भी बताना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने का अर्थ है अपने परिवार में आसक्ति घटाना। वो बड़ी बात है अपने परिवार में आसक्ति घटाना। कैसे बोले? अगर आपसे पैसे की दरकार है, पैसे की अपेक्षा है, अगर पैसा हम अगर वो वक्ता सोच रहे हैं कि मुझे पैसा मिलेगा, वो किस मुंह से कहेगा कि मुझे कि आप कृष्ण भक्ति में जुड़िए। और कृष्ण भक्ति का मतलब है कि अपने जीवन में कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए और अपने शरीर और परिवार के प्रति आसक्ति घटाइए। नहीं बोलते प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, जिनको संस्कृत का स नहीं पता, जिनको कृष्ण का क नहीं पता, उनको प्रभुपाद संस्कृत के श्लोक सुना रहे हैं और उनको प्रभुपाद कृष्ण भक्ति के बारे में, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और क्यों उनको सफलता मिली? क्योंकि उनको ये दृढ़ विश्वास था कि जो कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हैं वही कृष्ण इन पाश्चात्य जो विदेशी लोग हैं इनके हृदय में बैठे हैं। अगर कृष्ण चाहेंगे, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो इनका हृदय बदल देंगे, इनको भक्त बना देंगे। और क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी, प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद की इच्छा थी और प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने जितने हिप्पी नशेड़ी जो लोग हैं, चरस गांजा LSD जो लेने हैं, उनको भगवान ने प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए उनको शुद्ध भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। और सिगरेट गांजा नशे की बात छोड़ो, उन्होंने चाय कॉफी तक पीना छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद के शिष्य ने कि प्रभुपाद आखिर हम लोग भक्त कैसे बन गए, हमारा ऐसा क्या पुण्य था, हमने ऐसा क्या किया कि हम लोग भक्त बन गए और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम के बारे में आपसे जानकारी मिल गई। प्रभुपाद ने बोला आपका कुछ योग्यता नहीं है, ये सब मैंने आपको प्रदान कर दी है योग्यता। तो इसी तरह से हमारी भी कुछ योग्यता नहीं है, आपकी कुछ योग्यता नहीं है, आप लोग मैं हम लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कृष्ण विद्वेषी हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन अगर हम प्रभुपाद की शरण लेंगे, अगर हम प्रभुपाद के प्रतिनिधियों की शरण लेंगे, अगर हम गुरु की शरण लेंगे तो उनकी कृपा से हमें ये योग्यता मिल जाएगी कि हम कृष्ण भक्ति में जुड़े। तो अब कृष्ण भक्ति में हम लॉलियम लोभ लालच ग्रीड कैसे दिखा सकते हैं? हम कृष्ण भक्ति में लोभ दिखा सकते हैं अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाकर जिससे हम हमेशा भगवान को याद करते रह सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप सो तो ये सोच के आप सोने के लिए जाओ कि अभी मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ 5-6 घंटे। रेस्ट करने के बाद सुबह जब शरीर और मन फ्रेश होगा मेरा तो उस समय मैं अच्छे से भगवान का जप कर पाऊंगा या जप कर पाऊंगा, है ना। और मैं सुबह उठने का हमारा प्रयोजन होना चाहिए कि सुबह हम उठे अच्छी तरह से नहा धोकर हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, गुरु की आरती करें और फिर हम बैठकर जप माला पर भगवान के दिव्य नामों का जप करें। तो जिस प्रकार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का संग लेने के लिए लालायित थे, जिस तरह सीता माता और लक्ष्मण जी भगवान राम का संग लेने के लिए आतुर थे, हम भगवान का संग कैसे ले पाएंगे? हम भगवान का संग ले पाएंगे भगवान के दिव्य नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी भेद नहीं है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी भेद नहीं है। हम भगवान का नाम लेंगे मतलब भगवान हमारे साथ ही है। अगर हमने कृष्ण शब्द बोला तो कृष्ण हमारी जीवा पर मौजूद है। ये कैसे संभव है? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं अंडांतरस्थ परमाणु चिरांतरस्थम, भगवान एक एक कण के अंदर विराजमान है और दो कण के बीच में अगर कुछ जगह है वहां पर भी भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान को बोलते हैं सर्वव्यापी, है ना, बोलते हैं ना भगवान सर्वव्यापी। सो हम जब भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे तो भगवान के दिव्य नामों का जप करने का मतलब है साक्षात भगवान का संग करना। तो हमें अपना लोभ भुलाना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों का अधिक से अधिक जप करके। जब आप माला पे जप कर सको माला पे जप करो। जब आप माला पे जप नहीं कर सकते, सपोज आप काम पे जा रहे हो, आप स्कूटर कार मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो उस समय माला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम मुंह से बोलते रहो, है ना। और जब भी मौका मिले माला निकालो और भगवान के नामों का जप शुरू करो। ये इस सरल कार्य के द्वारा हम साक्षात भगवान का संग कर सकते हैं। और भगवान जो है वो सूर्य के समान है। ये चक्षुरे सर्वदा सकल ग्रहाणा, जो सूर्य है भगवान की आंख है, तो जिस तरह सूर्य बहुत प्रकाशवान है उसी प्रकार भगवान भी बहुत प्रकाशवान है। और जहां पर सूर्य है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता, है ना। इसी तरह से जहां पर भगवान है वहां पर अंधेरा रूपी जो अज्ञान, अंधेरा रूपी जो मोह, वो नहीं रह सकता वहां। इसलिए हम जितना, और हमारे शास्त्रों का आदेश है तमसोमा ज्योतिर्गम्य, है ना, अंधेरे में मत रहो प्रकाश की तरफ जाओ। प्रकाश कौन है? प्रकाश स्वयं भगवान है, है ना। तो हमें अंधकार में नहीं रहना। हम अंधकार में हैं, मान लिया हम अंधकार में हैं, लेकिन अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के द्वारा। हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, हम भगवान का साक्षात व्यक्तिगत संग कर सकते हैं भगवान के दिव्य नामों का जप करके। और भगवान के दिव्य नामों का जप करने की शक्ति कहाँ से आएगी? भगवान के दिव्य नामों का जप करने की शक्ति हमें मिलेगी जब हम वैष्णव का संग करेंगे, जब हम वैष्णव के साथ मिलेंगे। वैष्णव से भगवान का नाम जप करने की महिमा आवश्यकता के बारे में सुनेंगे तो हमारे में रुचि जागृत हो जाएगी कि हमें अवश्य भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए। सो हम अगर सोचे कि एक दिन में ही हम 50 माला करने शुरू कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ भी माला नहीं कर रहे तो 2 माला से शुरू करो। जरूरी नहीं है कि एकदम से आप लोग 16 माला या 25 माला करने शुरू कर दो, 64 माला करने शुरू कर दो, जरूरी नहीं है। आप पहले 2 माला से कम शुरू करो। माला को हाथ में पकड़ना सीखो कैसे जप होता है। और धीरे धीरे जब आपकी रुचि बढ़ जाएगी, जब आप भगवान के बारे में और जानकारी मिलेगी, तो आपका अपने आप से मन करेगा कि अब मुझे 2 माला करते नहीं रहना है, मुझे अपनी जप को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने जप को बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो ऐसा नहीं है वो केवल मुझे फायदा देगा, वो मेरे पूरे परिवार को फायदा देगा। जैसे आप देख लो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे, प्रहलाद महाराज की जो माता है, प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या है? कयाधु है ना। प्रहलाद महाराज की माता भगवान की भक्ति नहीं कर रही थी, लेकिन जब प्रहलाद महाराज को लेने के लिए आए, प्रहलाद महाराज जो भगवत धाम जा रहे थे, तो प्रहलाद महाराज की माता को भी वही लाभ प्राप्त हुआ। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे, तो उनकी माता को भी भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रहलाद महाराज के पिता, जो कि एक तो व्यक्ति है, चलो वो कह रहा है मैं भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहा, एक व्यक्ति है भगवान से लड़ाई कर रहा है, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, भगवान को अपना दुश्मन समझ रहा है, लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, इसलिए उसके पिता हिरण्यकशिपु को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान ने उनको सद्गति प्रदान की। इसी तरह से अगर हम अपने परिवार का फायदा चाहते हैं, अपने घर वालों का कल्याण चाहते हैं, तो आप अच्छे से भक्ति करो। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं है केवल आपको फायदा होगा, आपके पूरी फैमिली को फायदा होगा। जिस जिसके बारे में आप चिंता करते हो, हर उस व्यक्ति को आपकी चैंटिंग से, आपकी भक्ति से फायदा मिलेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने शिवास पंडित को बोला था, शिवास पंडित ने बोला एक बार, चैतन्य महाप्रभु ने शिवास पंडित को बोला कि उस समय नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित के घर में रह रहे थे, शिवास पंडित और उनकी जो वाइफ है मालिनी देवी, वो नित्यानंद प्रभु को अपने बच्चे की तरह मानते थे, अपने बच्चे की तरह। और नित्यानंद प्रभु जब उनके घर में रह रहे थे शिवास पंडित के, उन्होंने कभी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया, तो मालिनी देवी अपने हाथ से उनको खाना खिलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन शिवास पंडित के पास बैठे थे, उन्होंने बोला कि आपने किसको घर में रखा हुआ है, इसकी ना जात का पता, ना जात पात का कुछ पता नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने इनको अपने घर में रखा हुआ है, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समाज में आपका नाम खराब हो सकता है। तो शिवास पंडित ने बोला कि नित्यानंद प्रभु कि मैं सेवा नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरे पूरे वंश का नाश हो जाए, मुझे लोग समाज से धक्के मार के बाहर निकाल दें। अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में मदिरा का प्याला भी पकड़ा होगा, या अगर वो यवनी किसी मुस्लिम स्त्री से विवाह भी कर लेंगे अगर, तो भी मेरी नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा में कुछ कमी नहीं आएगी। चैतन्य महाप्रभु एकदम उठकर खड़े हो, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारी इतनी श्रद्धा है नित्यानंद प्रभु में, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तो कल्याण होगा ही, तुम्हारे घर के नौकर नौकरानी का भी कल्याण हो जाएगा। नौकर नौकरानी की बात छोड़ो, तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली भी भगवत धाम चलेगा। सो अगर हम चैतन्य महाप्रभु में, नित्यानंद प्रभु में, भगवान कृष्ण में अगर हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, श्रद्धा को परिपक्व करते हैं, अगर हम उनके प्रति अपनी भक्ति बढ़ाते हैं, तो इससे हमारा तो फायदा होगा, हमारे परिवार का जिनके बारे में हम हमेशा चिंतित रहते हैं उनको भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो अगर आप अपने परिवार का कल्याण, वास्तविक कल्याण चाहते हो, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने जीवन को इस प्रकार उसमें बदलाव लेके आओ कि आप हमेशा निरंतर सततम कीर्तयन्तु, हमेशा भगवान का स्मरण कर सको। हरे कृष्णा।